यशोदानन्दना व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन जमुना तेरा वनचारी जमुना तेरा बनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जमुना तेरा बनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुवाद ब्रह्मराज काचार्य भगवान ग्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी हिरोवाद की जय जय ओम विश्वानंद त्रिलापृष्ठ भक्ति सिद्धांत गोस्वामी त्रिभुवाद की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय नामचार श्री हरिदास ठाकुर की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर हरि विमानंद अंग्रेजी वाला किताब कहाँ है असीम हिंदी कल तमाल दे दिए थे ना ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कितने लोग हैं जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझते हैं अच्छा ओके तभी ले जाओ तब हिंदी में होगा ओके सब हिंदी वाले आ गए जाओ ये मरुभूमि मत बनाओ इधर चलो बिल्कुल आगे बामन देव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय क्या बात है बलदेव अंग्रेजी सीख रहे हैं क्या यहां जो चला गया सब पीछे से केवल डॉक्टर को छोड़कर सब आगे आ जाओ तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से चौथा स्कंध अध्याय 24 श्लोक संख्या 72 इदम् आह पुरा अस्माकं भगवान् विश्वसृक् पति भृगु आदिनाम् आत्मजानाम् श्रीसृक्षु संश्रीसिक्षताम् इदमाह पुरास्माकम् इदमाह पुरास्माकम् भगवान् विश्वसृक्पते भगवान् विश्वसृक्पते भृगुवादिनाम् आत्मजानाम् भृगुवादिनाम् आत्मजानाम् श्रीसृक्षु संशिक्षताम् इदमाह पुरास्माकम् इदमाह पुरास्माकम् भगवान् विश्वसृक्पते भगवान् विश्वसृक्पते भृगुवादिनाम् आत्मजानाम् भृगुवादिनामात्मजानाम् श्रीसृक्षु संशिक्षताम् माता जी लोग idam
yah
aha kaha pura pahale asmakam hamse bhagavan swami विश्वसृक ब्रह्मांड के स्रष्टा पते स्वामी भृगु आदि नाम भृगु आदि ऋषियों को आत्मजानाम उनके पुत्रों को शिश्रिक्षु उत्पत्ति के इच्छुक संसृक्षताम सृष्टि के लिए उत्तरदायी। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सर्वप्रथम समस्त प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। तात्पर्य, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगुमुनि आदि अन्य ऋषियों मरीचि आत्रेय वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया था। चूंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः विष्णु ने संतान उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने के लिए हजारों देवता तथा ऋषि उत्पन्न किए। साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को यह स्तुति जिसे शिव जी सुना रहे हैं सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यस्तता, किंतु इन व्यस्तता का निराकरण भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है, जैसा कि शिव जी द्वारा की गई इस स्तुति में बताया गया है। इस प्रकार हम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। तभी सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होंगे। तभी सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पथ में विचलित नहीं होंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया इसी प्रयोजन से चलाया गया है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम में बताए गए कर्म में लगा रहता है। यह ठीक है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किंतु यदि वे अपने पहले कर्तव्य भगवान से निरंतर संपर्क रखने को स्मरण रखते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि वे केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करने में लगे रहते हैं और भगवान से अपने संबंध का स्मरण नहीं करते तो उनका सारा व्यापार तथा सारा वर्णाश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में इसकी पुष्टि की गई है। धर्मास्वानिश्चिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्यद यद्रतिम श्रम एव हि केवलम्। निष्कर्ष यह है कि अपने अपने कर्म को निभाते हुए व्यक्ति को कार्य में बाधा नहीं पहुंचने देना चाहिए, मात्र श्रवण कीर्तन की भक्ति करनी चाहिए। अपने कर्म धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 18:46 में कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूतानां जेन सर्व इदं ततम स्वकर्मणा तमवश्चर्यः सिद्धि विन्दन्ति मानमः। मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवों के उद्गम तथा सर्वव्यापी भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपना कर्म करता रह सकता है, किंतु यहां पर शिव जी ने जो स्तुति बताई है, यदि उससे मनुष्य भगवान की पूजा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणात् 1:2-13 भागवतम। हमें अपना कर्म तो करना ही है, किंतु यदि हम अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान शिव के द्वारा बतलाए गए जो स्तुति हैं, जो प्रचेताओं के मध्य में बतला रहे थे, इसका ये उपसंहारिक श्लोक हैं। इन श्लोकों को यहां पर भगवान शिव कहते हैं ये योगादेश श्लोक हैं, योग आदेश। योग मतलब योग यानी जुड़ना, भगवान से कैसे जुड़ा जाए, इस संबंध में ये श्लोक बतलाते हैं। इसलिए योगादेश इस श्लोक को कहा गया है। पूर्ववर्ती श्लोक में, पूर्व के श्लोक में से योगादेश कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं कि इन योगादेश जो मैं बात बतलाया, इसको तुम लोग धारण कर करके, मुनि व्रत हो करके, इसको तुम धारण करोगे तो मुनि व्रती हो जाओगे और इस प्रकार से अपने कार्य में लग सकते हो। यानी कृष्ण भावना भावित रह करके हम कोई कार्य करें तो वह कार्य की सफलता है। हम लोग कुछ न कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ न कुछ बनाते हैं, भले अच्छा चीज खराब बनाते हैं या खराब चीज अच्छा बनाते हैं, यही करते हैं। कुछ भी क्रिएट करना है तो क्रिएशन से पहले ये जरूरी है कि हम ऐसे स्तोत्रों का पाठ करें, भगवान का चिंतन करें और तब हम वह कार्य करें। भगवान का चिंतन कर करके हम कार्य करेंगे तब वह कार्य सफल होगा। ये हमारी परंपरा है, ये ऐसी ही परंपरा है। बिना भगवान के चिंतन का कोई काम करना शुरू करे सब गड़बड़ हो जाएगा। आज जो भी गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है संसार में, इसका एकमात्र कारण है कि हम काम तो कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, भगवत परायण नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया सृष्टि करने के लिए, ब्रह्मा जी सृष्टि करने से पहले तपस्या किए, तपस्या कर करके भगवान को प्रसन्न किए। भगवान प्रसन्न जब हो गए तो भगवान ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके मानो अपने धाम का दर्शन कराए। सृष्टि विषयक जो भी बातें थी वह बात ब्रह्मा जी को भगवान बतलाए और भगवान से ज्ञान प्राप्त कर करके ब्रह्मा जी सृष्टि किए। यही विधि है सृष्टि करने का। कुछ क्रिएट करना है तो उसका विधि यही है कि पहले हम गुरु वर्ग से सीखें, उसके बाद करना प्रारंभ करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य प्रारंभ करते हैं, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगु आदि अन्य ऋषियों को उत्पन्न किया। और देखिए ये जितने लोग हैं ये लोग जय श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौनिताई की जय। मुझे कल कानपुर जाना है इसलिए अभी से प्रैक्टिस हो रहा है। तो ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया चतुष्कुमारों को, प्रथम प्राणी इस संसार में ब्रह्मचारियों का रचना किए ब्रह्मा जी। जब ये ब्रह्मचारियों का रचना हो गया तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम लोग सृष्टि करो, ये है परंपरा सिस्टम। क्योंकि उनको यही आदेश मिला था उनके पिता से, यानी भगवान ने यही आदेश दिया था कि बलराम तुम सृष्टि करो, लेकिन नींद का नहीं, तो सृष्टि करो। और ब्रह्मा जी प्रारंभ किए। तो हम लोगों का धर्म है भगवान के कार्य में सहयोग करना, भगवान के कार्य में सहयोग करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, ये भगवान का कार्य है और उस कार्य में सहयोग करना। कौन कैसे कर सकता है, यह गुरु से प्राप्त करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा तुम सृष्टि कर करके और मेरे इस मिशन में सहयोग करो। और ब्रह्मा जी परंपरा को निभाते हुए चतुष्कुमारों को कहे कि तुम भी हमें सहयोग करो, हमारे गुरु और पिता विष्णु के मिशन में कार्य करने के लिए। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे कि मैं अपने गुरुदेव का आदेश पालन करते हुए उनके आंदोलन को बढ़ा रहा हूं और कृष्ण ने आप लोगों को भेजा है, आप लोग हमें सहयोग करें, प्लीज हेल्प मी टू कैरी द ऑर्डर ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद यही कहते थे। सेम वे ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं अपने पुत्रों से, शिष्यों से, चतुष्कुमारों से। लेकिन ये चतुष्कुमार लोग जो थे इन लोगों को दूसरा कुछ रस लग गया था, ब्रह्मचर्य रस लग गया था। वो लोग कहे कि ये संसार में हम क्यों फंसने जाएं, ये घर गृहस्थी में क्यों फंसने जाएं। हालांकि चतुष्कुमार लोग यदि शादी करते तो भी नहीं फंसते। खैर लेट अस नॉट स्पेकुलेट क्या वे होता, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं हम इसमें नहीं फंसेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि गुरु और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन शादी ही एक ऐसा चीज है जिसमें आप ना कह सकते हो गुरु को और पिता को। यदि गुरु जी कहें कि बेटा शादी करो और ना कह दो तो अपराध नहीं है। आए तो गुरु को कहने का भी नहीं जरूरत पड़ता है। आजकल गुरु जी कहते शादी मत करो और हम लाइन में लगे हैं शादी करने के लिए। पहले उल्टा था, अभी उल्टा हो गया जमाना। जगन्नाथ दूसरा जगन्नाथ कहाँ है? तो ये चतुष्कुमार लोग कहे कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, तो शास्त्र के अनुरूप था यह उनका कहना, लेकिन ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान के सेवा में लोग बाधक बन रहे हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है तो रजोगुण में गुस्सा तो होता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, गुस्सा तो होता ही है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा हुआ कि हमारे बदमाश से बच्चे हो गए हैं। जब गुस्सा हुआ तो उनके भ्रिकुटी के बीच से एक छोटा मांस का टुकड़ा गिरा, एक बालक के रूप में जो नीला और लाल रंग का था, और गिरते ही वह 11 भागों में बंट गया और वह रोने लगा, रोने लगा। जो भी गुस्सा से उत्पन्न होते हैं, यानी जो तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, वो जरूर रोते हैं, ये स्वभाव है। रजोगुण और तमोगुण मुख करके रुलाता ही है। जो व्यक्ति तमोगुण में रहेगा वो रोएगा हमेशा, जो व्यक्ति रजोगुण में रहेगा वो हमेशा रोएगा, जो सत्गुण में रहेगा और विशुद्ध सत्गुण में रहेगा वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो रोने लगा वह बालक, इसीलिए उनका नाम पड़ा रुद्र, और संख्या में 11 थे इसलिए ये हुए 11 रुद्र। भगवान ब्रह्मा जी उनको सांत्वना दिए कि शांत रहो, शांत रहो, कोई बात नहीं, तुम रोओ मत। तो कहे क्यों नहीं रो, न तो मेरा नाम है, न रहने का स्थान है कहीं पर, और न तो मेरा काम क्या है, न काम कुछ है, बतलाइए हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, और रहने का स्थान क्या है। 3 बात रुद्र पूछे। तो 11 रुद्रों के अलग अलग नाम बतलाए, उसमें से एक नाम है शिव, दूसरा नाम है शंकर, ऐसे ऐसे 11 नाम है। भगवत गीता में 10वें अध्याय के श्लोक 23 में कहा गया है, भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकराश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो 11 रुद्र हैं, उसमें से एक है भगवान शिव। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी 11 पत्नियां होगी, उन पत्नियों का भी नाम भागवतम में वर्णन किया गया है, और उनको रहने के लिए 11 अलग अलग स्थान दिए कि इन इन स्थानों पर तुम रह सकते हो। कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा काम क्या होगा। तब उन्होंने कहा काम क्या होगा, पता नहीं मैं तुम्हें बताऊं कि नहीं। अरे एक बेटे हुए, मैं इनको काम बताया तो ये लोग ना बोल दिए, पता नहीं तुम मानोगे कि नहीं। कहा नहीं पिताजी, आप कहकर आजमाइए तो हमको, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव का आविर्भाव जो हुआ था, भगवान शिव का जन्म हुआ था, रुद्र का जो जन्म हुआ था वो गुस्सा से हुआ था, यानी तमोगुण से उत्पन्न, और गुस्सा का रूप बड़ा अगली होता है, बड़ा भयावह होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि करो, तो उन्होंने सृष्टि करना शुरू किया। तो कैसा सृष्टि किया गया, अपने अनुसार। बेटे जो होते हैं या बेटियां होती हैं तो बाप के समान होते हैं, मां के समान होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने बाप के समान है, इसका नाक बाप के समान है, आंख मां के समान है, यही ना कॉम्बिनेशन होता है बाप और मां का, और गुण भी होता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि बेटियों का गुण कैसे प्राप्त होता है और बेटों का गुण कैसे प्राप्त होता है, ये भी वर्णन किया गया है। तो भगवान शिव जब सृष्टि किए तो लाइक फादर लाइक सन, तमोगुण प्रधान भगवान शिव गुस्सा से वे उत्पन्न हुए थे, तो उनके जो बच्चे हुए ये भी गुस्सा से उत्पन्न हुए।
सब भूत पिशाच उत्पन्न हो गए और देखने में बड़े भयावह लग रहे थे। अब सब एक जगह मिले, जब सब एक जगह मिले तो एक दूसरे को मारने लगे, झगड़ा करना शुरू किए। तमोगुण का यही प्रभाव है। तमोगुण में क्या होता है, जब लोग मिलते हैं तो झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का निंदा करते हैं। ये तमोगुण का पहचान है, रजोगुण का पहचान है कि हम मेरा है वो दूसरे का है इत्यादि इत्यादि। तो ये लोग इतने फ्रोसस थे, इतने भयावह थे, इतने भयावह थे कि ब्रह्मा जी तरफ आंख दिखाने गए। ब्रह्मा जी बेचारे डर गए कि आंख दिखा रहे हैं, लगता है हमारे ऊपर अटैक करने वाले अब हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बंद करो, बहुत सृष्टि हो गया, अब इतना ही तुम रहने दो, अब बंद करो, अब सृष्टि मत करो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान शिव के जो सो काल डिवोटी लोग हैं, जो भगवान शिव के डिवोटी हैं, वो भी उनके संतान हैं। भगवान शिव के जो डिवोटी हैं वो उनके संतान हैं। उन्होंने उत्पन्न कर दिया इन लोगों को, और ये बड़े फरोसस होते हैं। कभी कभी इतने फरोसस होते हैं कि भगवान शिव को भी खाने दौड़ते हैं, शिव को भी खत्म कर देना चाहते हैं। वो जानते हो कहानी ना, किसका था, भस्मासुर का है? भगवान शिव का भगत था, उनको ही भस्म करना चाहता था। तब फरोसस होते हैं भगवान शिव के भक्त, बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े भयावह होते हैं। भगवान शिव को भी मारने के लिए दौड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा थैंक यू वेरी मच, तुम मेरे आदेश का पालन किया, लेकिन मैं ऐसा सृष्टि नहीं चाहता हूं, इसलिए तुम अब सृष्टि रोक दो, बहुत हो गया तुम्हारा क्रिएशन, अब बंद करो। तब भगवान शिव ने कहा तब क्या करूं, बिना काम के थोड़े में रह सकता हूं, कुछ काम दीजिए, स्वाभाविक है, ये संसार जो है कर्मय संसार है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, जो भी आया है ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सबको काम करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चींटी जो है लाइन वाले नहीं रहती है, हैं? आप लोग देखा है चींटी का लाइन, वो चलती है रेल के डब्बे के समान, वो कहां जा रही है, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, प्रभुपाद जी कहते हैं वेयर इज फूड, भोजन कहां है, भोजन कहां है, भोजन ढूंढने जाती है। तो वैसे ही संसार में जो भी व्यक्ति है उसे काम करना पड़ेगा। भगवान शिव के लिए जब शिव ने कहा तो हमारे लिए काम क्या है, बतलाइए मैं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपस एव यथा पूर्वम स्रष्टा विश्व इदम भवान। कहते हैं बेटा तुम इन लोगों को सृष्टि तो कर दिए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को अभी खत्म कर दो, अभी कुछ दिन रहने दो, भूत पिशाच लोगों को कुछ दिन रहने दो, अभी खत्म मत करो, लेकिन तुम इन लोगों को खत्म करना तुम्हारा काम रहेगा। पहले कहते हैं तपह आतिष्ठ भद्रम ते, कहते हैं भद्रम ते, देखिए ब्रह्मा जी भगवान शिव पर गुस्सा नहीं किए, जहां के चतुष्कुमारों पर गुस्सा किए, क्योंकि वे आज्ञा का उल्लंघन किए थे। तो गुरु पिता, हालांकि शास्त्रों में है ये उल्लंघन चलता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने से उचित कार्य नहीं है, गुस्सा होता है। और जो आज्ञा पालन करता है भले नहीं करने आता है, फुलिसली करता है, लेकिन फिर भी भाई बेचारा अपना यथाशक्ति तथा भक्ति प्रयास तो किया, प्रयास तो किया। तो भगवान शिव प्रयास किए थे क्रिएशन करने का, अपने अनुरूप कर रहे थे क्रिएशन, इनको जगाइए, क्यों सो रहे हैं, खड़ा हो जाओ, नींद आ रही है तो, कि तुम भी क्रिएशन कर रहे हो, लगता क्रिएशन तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिए हैं। तो
भगवान शिव को कहते हैं भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, हे शिव तुम्हारा कल्याण हो। बेटा तुम ऐसा करो तप आतिष्ठ, तुम तपस्या में रत हो जाओ, तपस्या में लग जाओ, तपस्या करो। तो फिर क्या करूं, तपस्या करने से थोड़े कुछ करना पड़ेगा ना, तो कहते हैं हां करो, क्या करो, सर्वभूत सुखावहम, तुम तपस्या करो और तुम्हारे तपस्या के फल से समस्त प्राणी सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, वो तपस्या में लगे रहते हैं, जो भी मांगने जाता है वो दे देते हैं, जो भी आप मांगोगे भगवान शिव वह दे देंगे, आप भक्ति भी मांगोगे तो भगवान शिव भक्ति भी देंगे, आप जो मांगोगे वो देंगे। इसलिए कहते हैं सर्वभूत सुखावहम, समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करो। भक्तों को सुख प्रदान होता है योगादेश से, जो कि भगवान शिव ने बतलाया प्रचेताओं को, भक्ति योग का वर्णन कर करके, भगवान शिव के द्वारा किया गया भक्ति योग का जो वर्णन है, चाहे उनका सिद्धांत है, कितना मार्मिक सिद्धांत है, भागवतम में इसका वर्णन किया गया, अन्य शास्त्रों में किया गया है, हमने जो यहां सृष्टि परक बात बतलाए भगवान शिव, कितना सार गर्भित बात है। तो भगवान शिव इस प्रकार से भक्तों का पोषण करते हैं भक्ति प्रदान कर करके। जो व्यक्ति संसारिक बनना चाहता है उसको संसार के भौतिक पदार्थों को दे करके उसे सुख करना चाहते हैं, सुखावहम, वो समझता है कि मैं सुखी ऐसे हो जाऊंगा, तो कहते हैं ठीक है एवं मस्तु, तुम ऐसे ही सुखी हो। हालांकि भगवान शिव जानते हैं कि भौतिक जो तथा कथित मटेरियल हैप्पीनेस है वो व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता है, लेकिन चुप चाहते हैं लोग, कहते हैं ठीक है करो। तो एक काम यह है जब तक से सृष्टि चले, भगवान से तुम तपस्या करो और जब तक से सृष्टि चले सब लोगों को सुखहाल रखो, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, और जब सृष्टि खत्म होने लगे तब यथा पूर्वम, जैसे पहले था तुम्हारे सृष्टि से पहले वैसा ही कर दो, यानी सबको खत्म कर दो, कोई रहना नहीं चाहिए, यानी संहार करो। तो भगवान शिव संहार का इंचार्ज रहते हैं, यथा पूर्वम सृष्टा विश्व इदम भवान, कहते हैं आप ऐसा करो। फिर ब्रह्मा जी दूसरा सृष्टि किए। अच्छा, जब पहला सृष्टि हुआ तो उस समय मानो भगवान शिव ये स्तोत्र नहीं सुने थे, इसीलिए भूत पिशाच का सृष्टि कर दिए। जब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और हम सृष्टि करना शुरू करेंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न करेंगे, बस जो भूत पिशाच हैं, आजकल 99.9% लोग भूत पिशाच बन गए हैं, जो दूसरे को हनन करना चाहते हैं, हमने ये लोग हनन करना चाहते थे, भगवान शिव के सामने ब्रह्मा जी को आंख दिखा रहे थे। आजकल के बच्चे लोग भी अपने बाप मां को मार डालते हैं, भाइयों को मार डालते हैं, अरे कंस तो बाप को कारागार में डाल दिया था, इतना किया था, लेकिन आजकल तो कंस स्क्वायर हो गए हैं, कंस के भी बड़े कंस हो गए हैं जो मार डालते हैं बाप मां को, अपने बच्चों को मार डालते हैं। भगवान शिव इन भूत पिशाचों को मारे नहीं, ब्रह्मा जी मरवाए भी नहीं। ऐसी भी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, जो गर्भ में बच्चा है, जन्म भी नहीं लिया है, उसको भी मरवा डालते हैं। और यह सब काम कौन करता है, ये भूत पिशाच लोग करते हैं, यही लोगों काम है, मारना, काटना, झगड़ा करना। तो जो भी ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके मार पीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, प्रजल्प कर रहा है, ये सब भगवान शिव के फॉलोअर हैं, उनके क्रिएशन हैं, भूत पिशाच लोग हैं।
तब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि किए दूसरा सेट। जब दूसरा सेट सृष्टि किए तो उन लोगों को सृष्टि करने से पहले यह उपदेश बताए, और दूसरा जो सृष्टि किए मरीचि अत्रि अंग्रसौ पुलस्य पुलहर कृतु भृगवः वशिष्ठो दक्षस्य दशम तत्र नारदः। दस पुत्रों का उत्पत्ति किए ब्रह्मा जी सेकेंड सेट में, थर्ड सेट में। फर्स्ट सेट में तो हुए चतुष्कुमार, और सेकेंड सेट में शिव नहीं है, इसलिए इधर के भी नहीं उधर भगवान भी नहीं जीव भी नहीं, वो अनायास ही उनका जन्म हो गया। प्लानिंग नहीं था कि शिव जी का क्रिएशन हो, वो तो गुस्सा से आ गए, गुस्सा के बाई प्रोडक्ट हैं। अब दूसरा सेट जो क्रिएशन हुआ, सेकेंड क्रिएशन, उसमें से दस ऋषि लोग मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष छ दशम तत्र नारद। ये नौ का वर्णन करने के बाद सुखदेव को समझ छ नौ और च कह करके अलग करना चाहते हैं। ये नौ हैं और जो दसवां है वो नारद कहलाते हैं, क्योंकि नौ लोग हैं गृहस्थ लोग हैं, इनका काम है सृष्टि करना और नारद का भी काम है सृष्टि करना, लेकिन दोनों के सृष्टि में अंतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का सृष्टि स्थिति और प्रलय ये तीनों का जो लीला है, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज मेंट फॉर गिविंग कंडीशन सोल ए चांस फॉर गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाने का यह सुअवसर प्रदान करता है। तो सबका लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति। ये जो लोग हैं ये क्रिएशन करते हैं, नारद जी क्रिएशन करते हैं, वो क्या क्रिएशन करते हैं ब्रह्मचारी। ये देखिए ये प्रचेताओं को भगवान शिव उपदेश दिए, कैसा उपदेश दिए क्रिएशन करने के लिए, क्रिएशन में लगना चाहते थे इसलिए उपदेश दिए। दक्ष प्रजापति के भी पुत्र थे, 10,000 बेटे थे, वो भी क्रिएशन करना चाहते थे, और नारद जी बीच में मिलकर के उनका क्रिएशन कर दिए। क्या क्रिएशन किए ब्रह्मचारी के रूप में। तो नारद जी भी उपदेश दिए और भगवान शिव भी, दोनों किसके पुत्र हैं ब्रह्मा के, और दोनों ने उपदेश सुना है क्रिएशन के विषय में। नारद भी सुने हैं क्रिएशन के विषय में, लेकिन नारद जी का जो क्रिएशन होगा ब्रह्मचारी IYF ये नारद जी का क्रिएशन है, और भगवान शिव का जो क्रिएशन है ये गृहस्थ धर्म का जो अभी बताया गया है, इसीलिए नारद जी का क्रिएशन स्वीकार करना अच्छा होगा ब्रह्मचारियों के लिए, ठीक है ना। तो इन दसों लोगों का क्रिएशन ब्रह्मा जी किए, मरीचि का क्रिएशन ब्रह्मा जी के मन से, मरीचि ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए, अत्रि ब्रह्मा जी के आंखों से उत्पन्न हुए, अंगिरसा ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए, पुलस्य ब्रह्मा जी के कान से उत्पन्न हुए, पुलह ब्रह्मा जी के नाभि से उत्पन्न हुए, कर्तु ब्रह्मा जी के हाथ से उत्पन्न हुए, करना होता है कुछ ना, भृगु ब्रह्मा जी के स्पर्श से उत्पन्न हुए, वशिष्ठ ब्रह्मा जी के श्वास से उत्पन्न हुए, दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठा से उत्पन्न हुए, और नारद जी भगवान ब्रह्मा के बुद्धि से डिलीबरेशन कर रहे थे, सोच रहे थे कि सब गृहस्थे बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, सोच रहे थे तब नारद जी का उत्पत्ति हुआ बाय डिलीबरेशन बुद्धि से नारद जी का। उसके बाद धर्म की उत्पत्ति हुई भगवान के ब्रह्मा के वक्षस्थल से, अधर्म का उनके पीछे से, ऐसे काम क्रोध इत्यादि का हृदय से, इस प्रकार से उत्पत्ति बताया गया है। लेकिन 10 लोग हैं वैसे हैं, कर्दम का उत्पत्ति हुआ उनके परछाई से, ऐसे ऐसे उत्पत्ति हुई हैं अनेक प्रजापतियों का। तो ये 10 प्रजापति हैं जो प्रजा के पति हैं, इन लोगों को ब्रह्मा जी ने शिक्षा दिया था। तो यहां पर कहते हैं सुखदेवन चौदशम तत्र नारद, 9 लोग एक प्रकार का क्रिएशन करेंगे और नारद जी जो हैं अलग। यहां पर चतुष्क कुमारों का बात नहीं आया हुआ है, वो लोग प्रायः अपने में ही रमण करते रहते हैं। चतुष्क कुमार लोग आपस में हरि कथा करते रहते हैं, राधे जय जय माधव दैते सनक सनातन वर्णित चरिते। ये सनक सनातन आपस में वर्णन करते रहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये चतुष्क कुमार लोग हैं। या कोई पूछेगा तो बतलाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन नारद जी, इनका नाम है नारद, नर द नारद, जो भगवान को देता है उसे नारद कहते हैं। नारद जी का काम है, प्रभुपाद जी कहते हैं, टू डिलीवर कृष्णा, टू डिलीवर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड टू कंडीशन सोल, दैट इज द प्राइम बिजनेस ऑफ नारद। नारद जी का यह काम है कि लोगों को वो भगवान को देते हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हारो सकती आछे, हे गुरुदेव कृष्ण आपके हैं, आप कृष्ण को दे सकते हैं, यह शक्ति केवल आप में है। तो यह शक्ति केवल नारद में है। संसार में फंसाने के लिए 9 लोग हैं, लेकिन निकालने वाले कौन है? नारद जी। लेकिन यदि इस श्लोकों को सुनेंगे, इस पर सोचेंगे और इसके अनुसार करेंगे, जो यहां पर योगादेश को, भक्ति योग को, तब नहीं फंसेंगे। अब चलिए हम श्लोक पर आ रहे हैं। ये तो केवल इंट्रोडक्शन रहा इस पूरा इसका, अब श्लोक पर आ रहे हैं। यहां पर भगवान शिव कहते हैं इदम आह पुरास्माकम भगवान विश्व त्रिकपति। यहां भगवान शिव कहते हैं इदम आह, जिन स्तोत्रों का मैंने वर्णन किया, यहां पर अथॉरिटी पेश कर रहे हैं, कह रहे मैं अपने मन से बना करके नहीं किया तुम लोगों को खुश करने के लिए, मैं कोई मंत्र नया नहीं दिया। क्या बात है, बहुत लोग सो रहे हैं क्लास में, क्या बात है? बारिश में 2 चीज होता है, या तो भजन होता है और नहीं तो नींद आता है। अब डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। भागवतम के 10 स्कंद में वर्णन किया गया है वर्षा ऋतु का है? और वहां वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु में जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो मेढक के समान होते हैं, ट्र 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 करते हैं। तो ब्रह्मचारी लोग वर्षा ऋतु में क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुस्वा मामका पांडवा चैव किम्मा क्रोध संजय, पूरा गीता श्लोक याद कर लेते हैं। ये ब्रह्मचारियों काम बरसात में काम करने का, सोने का नहीं। कितना सोओगे? कुत्ते सोते हैं, गधे सोते हैं, सुअर सोते हैं, सोने वाला सबसे बड़ा कौन है प्राणियों में? हैं? भालू, बोर ना हैं? भालू, भालू क्यों बनोगे? भगवान ने मनुष्य ने दिया है, वो भी कथा में सुनने का। एक बार एक भक्त सो रहा था, पूछा गया भाई क्यों सो रहे हो?
कहते आप इतना अच्छा कथा कहते हैं कि नींद आती है, आनंद आता है कथा में, इतना आता है कि नींद आने लगता है। ऐसा मत करो आप लोग। चलिए एक श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। इदम स्तोत्रम न मया स्वकल्पनया कल्पित किंतु ब्रह्म वचनाद अवगतम इति तेषां विश्वासार्थाय आह। यहां पर विश्वास दिलाने के लिए भगवान शिव कह रहे हैं कि भैया ये मेरे द्वारा बनाया गया श्लोक नहीं है, मैं इसको इसका मनगढ़ंत नहीं, स्पेकुलेशन करके नहीं किया हूं। न मया स्वकल्पनाया, मेरे द्वारा कल्पित नहीं है। क्या है? किंतु निसंदेह इस श्लोक के प्रणेता कौन है? विश्व सृक्पति, विश्व के सृष्टि करने वाले, विश्व के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने इस श्लोक को दिया था। कब दिया था? पूरा बहुत पहले दिए थे, आज नहीं बहुत पहले दिए थे, यानी जब सृष्टि हुआ था उसी समय। अस्माकम अपने कहते हैं, हैं कि हमको कहे थे, मैंने सुना था, और लोग भी थे वहां पर। कौन कौन थे? भृगु आदि भी आत्मजानाम। भृगु आदि जो 10 पुत्र, यानी नारद जी भी वहां पर थे, 10 पुत्र थे और मैं भी था 11, और 11 रुद्र, मतलब सबके साथ में इस बात को उन्होंने बहुत पहले कहा था। कथने हेतु, कारण क्या था, किस लिए उन्होंने श्लोक कहा था, किस लिए श्लोक कहते, क्यों कारण था श्लोक कहने का? कहते हैं शिशृक्षु संशिक्षताम इति सृष्टि प्रदक। ये श्लोक कहा गया था सृष्टि के लिए। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रचेता लोग सृष्टि करना चाहते थे, है ना, सृष्टि के लिए ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे और बीच में भगवान से मिल गए थे, है ना, समुद्र किनारे गए थे सृष्टि भगवान का, भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि हम सृष्टि करने जा रहे हैं और सृष्टि कैसे हो भगवान ज्ञान दीजिए, तो भगवान शिव को भेजे थे। और प्रश्न आता है कि सृष्टि तो भगवान का कार्य है, भगवान ब्रह्मा जी को बतलाए थे, तो ऐसा सुंदर गुह्य ज्ञान ब्रह्मा जी को कैसे प्राप्त हो गया? तो भगवान शिव कहते हैं भगवान विश्व सृक्पति, ये भगवान हैं, ब्रह्मा जी ऑर्डिनरी नहीं हैं, ये सामर्थ हैं, सर्व सामर्थ हैं, इनके समर्थता को यहां पर बतलाया गया है। तो भगवान शिव मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं इस श्लोक से, यह बात बतलाए हैं कि हे पुत्रों, ये जो श्लोक मैंने तुम लोगों को सुनाया है, ये जो भक्ति परक जो बात मैं तुम लोगों को बतलाया है, सर्व सामर्थ हमारे पिता सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के पति विश्व सृक्पति, ब्रह्मांड के स्रष्टा, ब्रह्मांड के स्रष्टाओं के भी स्वामी पति, उन्होंने भृगादि ऋषियों के बीच में हमारे हमसे कहा था, अस्माकम हमसे कहा था। यहां पर भृगु मुनि का नाम आया हुआ है, 10 ऋषियों में से नारद इत्यादि का नाम नहीं आया है यहां पर, यहां भृगु जी का नाम आया हुआ है। ऋषियों में श्रेष्ठ हैं भृगु जी। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं महर्षियां भृगुरहम, महर्षियों में मैं कौन हूं? भृगु हूं, भृगु हैं। भृगु मुनि का भगवान से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, नारद जी का तो संबंध है ही, लेकिन भृगु मुनि का बड़ा संबंध है। भृगु मुनि नारद जी सभी को प्रचार करते हैं, लेकिन भृगु मुनि का जो जोन है वो असुरों का है, असुरों के गुरु हैं भृगु। सामान्य लोगों को प्रचार करना तो सब कर सकते हैं, कंग्रीगेशन डिवोटी कोई बना सकता है, टैक्सी वालों को, रिक्शा वालों को, सब लोगों को बना दो, किसी को प्रचार कर सकते हो, लेकिन जो सो कॉल्ड, क्योंकि ये बेचारे इनोसेंट ज्यादा हैं, आप जो कहोगे महाराज जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप प्रीचिंग है वो टफ है। प्रभुपाद जी तेजस को एक बार एक खत लिखे थे और उसमें तेजस ने पूछा था, प्रभुपाद जी ये लोग बड़े लोग हैं, इन लोगों को कैसे हम प्रचार कर सकते हैं, इन लाइफ मेंबरों को। देखो जो सामान्य लोग हैं उनमें धन की लालसा है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। जो धनी लोग हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, समझते हैं, पैसा का संतुष्ट हो गए, पैसा हो गया, आप नहीं चाहिए, पैसा कमाना चाहते हैं और उनके पास पैसा है, तो उनके पास पैसे का अभिमान है और पैसे कमाने का लालसा है। जो बेचारा गरीब है उसके पास अभिमान नहीं है पैसे का, केवल पैसे कमाने का लालसा है। चाहे IYF स्टूडेंट लोग हुए, उनको पैसे कमाने का लालसा है, अभी कमाए नहीं है तो अहंकार नहीं है, और अहंकार ही व्यक्ति को असुर बनाता है। अहंकार अभिमुद्धात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो लाइफ मेंबरशिप प्रीचिंग ऑर्डिनरी नहीं है, इसीलिए लोग मंगला आरती क्लास नहीं आते हैं कभी कभी, लाइफ मेंबरशिप प्रीचर लोग, क्योंकि संग करते हैं असुरों का ना, तो असर थोड़ा पड़ जाता है। और सही में ये स्ट्रांग बनकर रहना है तो आओ सब प्रोग्राम, मंगला आरती क्लास गुरु पूजा, नहीं तो यह संग वह चढ़ेगा रंग। संग कर रहे हैं उन असुरों का जिनका अहंकार है। बॉम्बे में एक लाइफ मर्सी प्रीचर थे बड़े, उनको तो ऐसा अहंकार हो गया था कि ब्रह्मचारियों से कहते, अरे पैसा मैं लाता हूं तब तुम लोग खाते हो, खाना भी नहीं मिलेगा, ये भी कहते थे, नहीं पता नहीं आज कहां गए। अहंकार बढ़ जाता है। तो भृगु मुनि के प्रतिनिधि हैं लाइफ मेंबरशिप प्रीचर लोग, हैं याद रखना आप लोग। भृगु मुनि खराब नहीं है, लेकिन शुक्राचार्य जो है ना, बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। किस वंश के थे? भृगुवंशी थे शुक्राचार्य। भगवान ने कहा, अरे बलि महाराज आप तो कितने महान हैं, जिनके गुरु भृगुवंशु हैं, तो भृगु मुनि। और भृगु मुनि का नाता भगवान से बड़ा गाढ़ है, बड़ा प्रगाढ़ है। आप लोग कथा जानते होंगे कि यही सब बैठे हुए थे पता लगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, आप लोग मालूम है कहता ना, कोई बीणा नहीं उठा रहा था। भृगु जी ने कहा मैं बीणा उठा, चलो देखता हूं क्या होता है। भृगु चल दिए, पता लगा लिए भगवान शिव कौन है। भगवान शिव को प्रणाम वणाम कुछ नहीं किया, भगवान शिव को बड़ा गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ गया। भगवान शिव तो मारने के लिए दौड़े, ब्रह्मा जी भगा दिए। लेकिन जब विष्णु के पास गए तो विष्णु के वक्षस्थल पर जाकर के पैर रख दिए। अब लक्ष्मी जी थी, उनको बड़ा गुस्सा आया, कोई पत्नी हो पति को इंसल्ट करे, भले वो इंसल्ट कर सकती है पति को लेकिन दूसरा नहीं करेगा, बात है अंशु जी है? उसको बोलती हमारा पति है, हमारा अधिकार है, तुम्हारा क्या अधिकार है, वो इंसल्ट करे चलता है, हंस रहे हो शादी मत करना नहीं तो फिर तो इंसल्ट होगा तुम लोग। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गया, कहा पंडित तो अपने को क्या समझता है, चलो आज से मैं श्राप देती हूं तुम लोगों के पास कभी नहीं जाऊंगी, भीख मांगते रहो। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया लक्ष्मी जी, स्त्रियों की बुद्धि बड़ा कम होता है, समझती नहीं है सही बात। अरे एक तो भगवान विष्णु वो क्या समझ रहे थे, अरे हमारे घर पर अतिथि आया, अतिथि देव भव, ये तो अतिथि आया, हम इसका सत्कार नहीं कर पाए।